ये आकाशवाणी है। अब आप करिश्मा राय से समाचार सुनिए। सरकार ने कल केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 2026 में समाप्त होने वाला है और 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें प्राप्त करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा। श्री वैष्णव ने कहा कि आयोग के लिए एक अध्यक्ष और 2 सदस्यों की नियुक्ति शीघ्र ही की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 8वें वेतन आयोग के फैसले से लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार आएगा और उपभोग को बढ़ावा मिलेगा। सोशल मीडिया पर पोस्ट में श्री मोदी ने सभी सरकारी कर्मचारियों के प्रयासों की सराहना की जो एक विकसित भारत के निर्माण के लिए काम कर रहे हैं। रेलवे यूनियनों के नेताओं ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन की घोषणा के लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया है। इस फैसले से 45 लाख से अधिक केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और 68 लाख से अधिक पेंशन भोगियों को लाभ मिलेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में तीसरे लॉन्च पैड TLP की स्थापना को स्वीकृति दे दी। इस TLP परियोजना से इसरो के अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण वाहनों के लिए श्री हरिकोटा में बुनियादी ढांचे की स्थापना पर बल मिलेगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कल स्पेडेक्स मिशन के तहत 2 उपग्रहों की डॉकिंग प्रक्रिया को सफलतापूर्वक संपन्न किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस उपलब्धि की प्रशंसा करते हुए इसरो के वैज्ञानिकों और उपग्रहों के अंतरिक्ष डॉकिंग के सफल प्रदर्शन के लिए अंतरिक्ष दल को बधाई दी। इसरो द्वारा स्वदेश में विकसित भारतीय डॉकिंग प्रणाली की सफलता के बाद भारत अमेरिका रूस और चीन के बाद इस प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाला 4था देश बन गया है। QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्ड इंडेक्स ने डिजिटल कौशल के लिए भारत को कनाडा और जर्मनी से आगे दूसरे स्थान पर रखा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस उपलब्धि पर खुशी व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में सरकार ने देश के युवाओं को ऐसे कौशल से लैस करके उन्हें मजबूत बनाने पर काम किया है जिससे वे आत्मनिर्भर बन सके और आय अर्जित कर सके। सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन शानमुगरत्नम ने कल शाम नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। इस दौरान भारत और सिंगापुर के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने के तरीकों पर चर्चा की गई। सिंगापुर के राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मुलाकात की। सिंगापुर के राष्ट्रपति भारत की 5 दिवसीय यात्रा पर हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और लोकसभा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारतीय राज्य से लड़ने की कथित टिप्पणी को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा और उन पर भारत की राष्ट्रीय अखंडता को कमजोर करने का आरोप लगाया। दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में श्री प्रसाद ने कहा कि संसद में विपक्ष के नेता के रूप में श्री गांधी को अपने शब्दों के प्रति सजग रहना चाहिए। भाजपा नेता ने इस बात पर जोर दिया कि भारतीय राज्य शब्द एक स्वतंत्र देश के रूप में भारत की संवैधानिक पहचान को प्रदर्शित करता है जो राष्ट्रपति और अन्य संवैधानिक संस्थानों और हस्तियों का प्रतिनिधित्व करता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने राजस्थान में 3 विश्वविद्यालयों को PhD के तहत शोधार्थियों का नामांकन करने से रोक दिया है। ये विश्वविद्यालय शैक्षिक वर्ष 2025-26 से अगले 5 वर्ष तक शोधार्थियों का नामांकन नहीं कर सकेंगे। OPJS विश्वविद्यालय, सनराइज यूनिवर्सिटी और सिंघानिया विश्वविद्यालय पर यह रोक लगाई गई है। पश्चिम बंगाल में समुद्र तट पर सफाई अभियान के बाद कल गंगा सागर मेला संपन्न हो गया। यह मेला देश के धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता को उजागर करता है। इस वर्ष करीब 1,10,00,000 से अधिक श्रद्धालु गंगा सागर आए। बंगाल की खाड़ी और भागीरथी नदी के संगम पर पवित्र स्नान करने के बाद श्रद्धालुओं ने कपिल मुनि मंदिर में पूजा की। प्रयागराज के महाकुंभ मेले में कल संस्कृति का महाकुंभ नामक भव्य सांस्कृतिक उत्सव शुरू हुआ। यह उत्सव अगले महीने 24 फरवरी तक चलेगा। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।